दंडवत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास जाहि कुल ते प्रगट होए ताहि कुल को नाम पुन द्वादस गुरिंद कहो मेरी है परना। परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नु एकागर करन दे लई रसना नु पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से इतिहास इथों तक पहुंचा है कि बहुत ही सुंदर तंबू है। सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने उस नूं देखिया ते बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। पए प्रसन्न जबै बिच बरे मातल अदक सराहन करे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि जदों सतगुरु गोविंद सिंह जी ने उस तंबू दे विच प्रवेश कीता ते बहुत ही ज्यादा खुश होए, उस वेले मामा कृपाल जी ने बहुत ही ज्यादा शलाघा कीती। सर्ब श्रोमण तुम जिम आहो तिम एह जगते उत्तम लहो। मामा कृपाल जी सतगुरां नूं कहिंदे ने कि जिस तरीके दे नाल तुसीं श्रोमणी हो इसे तरीके दे नाल जग दे विच इह जिहड़ा तंबू है इह वी सारिआं तों उत्तम है। सोने दले शर ढिग अस गयो इसके समसो बनत ना पयो। मामा कृपाल जी कहिंदे ने कि सुनिया है दिल्ली दे बादशाह औरंगजेब दे कोल भी ऐसा तंबू बना के भेजिया गया है, पर कहिंदे ने इसके समसो बनत ना पयो, एदे वर्गा ते ओ तंबू भी बनिया नहीं होएगा। अपर कौन सक है बनवाए बिना आपके शक्त ना काए। मामा कृपाल जी कहिंदे ने कि होर इस तरह दा तंबू कौन बनवा सकदा है, क्योंकि तुहाडे तों बगैर ऐसी शक्ति किसे दे विच नहीं। पिछले पहर फर्श करवायो तंबू के संग लेह जो आयो। कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने कि दिन दा पिछला पहर सी जदों के तंबू नूं ताणिया गया सी, जदों सतगुरु गोविंद सिंह जी ने तंबू नूं देखिया। आण दीवान लग्यो दरबार बैठे शोभत गुरु उदार। उस वेले बहुत वड्डा सभा दा इकट्ठ होया, दरबार लग्या, सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी बैठ के शोभा दे रहे। सिख संगत यार ब्रेंद मसंद गाए रबाबी शब्द आनंद। बहुत ही सारी सिख संगत ते बहुत ही सारे मसंद बैठे सन, जेडे रबाबी ने ओ गुरबाणी दे शब्दां दा कीर्तन कर रहे सन। सब हिन देखियो बण्यो अजायब हर कै हृदय उचत एह साहिब। सारिआं ने उस अजीब किस्म दे बणे हुए तंबू नूं देखिआ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੰਬੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਲਗ ਥਿਰ ਹੋਏ ਹਰ ਖਾਏ, ਪਠ ਰਹਿ ਰਾਸ ਭੋਗ ਤਬ ਪਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ, ਫੇਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਏ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਏ। ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਥਲ ਬਿਦਤ ਪਯੋ ਸੋ ਡੇਰਾ, ਕਰ ਸਰਾਹਣ ਜਿਸ ਜਿਸ ਹੀਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਤੰਬੂ ਦੀ ਧੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪੌਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਸੇ, ਸਿੱਖ ਸੁਰਗਣ ਮੈਂ ਸੁਰਪਤ ਜੈਸੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਗਨ ਮੈਂ ਸੁਰਪਤ ਜੈਸੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੰਦਰ ਸੋਭਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੀ। ਵਸਤ੍ਰ ਵਿਭੂਖਣ ਰਹੇ ਸੁਹਾਏ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸ ਕੋ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੌਣੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਕਿਤ ਤੇ ਆਈ, ਅਣਕ ਅਕੋਰ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਲਿਆਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਖਤਰੀ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਨਿਜ ਤਨ ਜਾ ਕੋ ਡੋਰਾ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੋਤ ਹੋ ਤੋ ਕੁਮ ਰਾਵ ਅਛੇਰਾ, ਆਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੀਨਸ ਡੇਰਾ। ਉਸ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਾਵ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ ਓਹਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸੁਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਨਿਕਟ ਪਠਾਈ, ਅਪਰ ਨੁਖਾ ਡੋਰੇ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਣ ਮੈਂ ਮੁਦਤ ਵਧਾਈ ਲੇਤ, ਬਸਨ ਦਰਬ ਜਾਚਕ ਕੋ ਦੇਤ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਸਨ ਦਰਬ ਜਾਚਕ ਕੋ ਦੇਤ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਹੇਤ ਗੁਰ ਆਏ, ਬੈਠ ਸਭਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਸੱਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਲਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੋ ਸਮਦਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। सुन सुन सुध को सब युत लाए, लय कोरन को चल आए। सुन सुन के खबर नु सारे दे सारे बड़े काले होए ने, ते सारे अपनिया पेटावां नु लै के सतगुरां दे हजूर पहुंचे। अर्पण कर बंद ना ठान, हृदय कामना बदन बखान। सारे दे सारे आण के नाले ते सतगुरां दा दर्शन करके नमस्कारां करदे ने, नाले अपनियां भेटावां सतगुरां दे चरणां दे विच अर्पण करदे ने। जिहड़ी वी किसे दे मन दी कामना हुंदी है ओह सतगुरां दे हजूर आखी जांदी। पिख पिख प्रेमी पुरवण कर, करना दृष्ट सवण पर तरें। अपने प्रेमी देख के सतगुरु जी सारिया दिया मंगा नु पूरिया कर दे ने, मेर दी नजर दे नाल सारिया दे वल तक दे ने। हाथ जोर खतरी सिख आयो, मैं तन जादा सीहत लियायो। इन्हें चिर नु ओ जरा प्रेमी सिख सी ओ चल के उथे पहुंच गया है, जिन्ने सतगुरां दे चरणां दे विच आण के बेनती कीती है कि सच्चे पातशाह मैं अपनी लड़की नूं तुहाडे चरणां दी दासी बनाउण दे वास्ते लै के आया। बने सनाथा तुम ते सोए, ए शरदा पूरन मम होए। कहिंदा कि तुहाडी मेहर दे नाल, तुहाडी कृपा दे नाल इह सुहागवंती होवेगी। मेरे मन दी जिहड़ी श्रद्धा है, मैं कामना करदा हां कि जरूर पूरी होएगी। सुन कर सिरी मुख ते फुरमायो, अंतपुर डोरा पहुंचायो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं नाल दी नाल उसने भी बेनती कीती है कि माता जी नूं अर्ज कीती है, ते माता जी ने प्रवानगी दे दिती है। कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने कि सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने फिर अपने सिरी मुख तो हुक्म कीता कि डोले नूं अंदर महलां दे विच पहुंचा दे। दे दर्शन संगत को सारी, गमने सतगुर सदन मजारी। सारी संगत नूं दर्शन दे के फिर सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी महलां दे विच परते। श्री गुजरी साहा सुधवाए, उत्सव ब्याह बुलंद बनाए। कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने कि माता गुजरी जी ने साहे नूं सुधवाया है, ते बहुत वड्डा विआह दा जिहड़ा उत्सव सी उस नूं प्रारंभ कीता। सतगुर को फेरे फिरवाए, पूरे आनंद में आनंद वधाए। फिर उस लड़की दे नाल सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे फेरे कर दिते ने, पूरी आनंद में आनंद वधाए। कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने कि आनंदपुर नगरी दे विच बहुत सारा आनंद दा माहौल पसरे। जथा जोग कुल रीत कराई, तन खर्चो बहु वजी वधाई। कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने कि जथा जोग कुल दियां जिन्नियां भी मर्यादावां सन उन्हां नूं पूरियां कीता गया है। तन खर्चो बहु वजी वधाई, बहुते सारे धन दा खर्च कीता गया, बहुत ज्यादा वधाइयां मिलियां। दुती ब्याह कल गी तर केरा, संग सुंदरी भाग भलेरा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने इस तरीके दे नाल कलगीधर सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा दूसरा विआह होया है। संग सुंदरी भाग भलेरा, भाव के सतगुरां दे महल दा नाम है सुंदरी, जेड़े के बहुत वड्डे भागां वाली। जिस की होई बैस बिसाला, गुर पीछे जीवी चिर काला। कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने कि सुंदरी जी दी बहुत लम्मी उम्र होई, सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने जदों नर नाटक रचाया उस तों बाद भी बहुत चिर तक सतगुरां तों बाद तक ए माता सुंदरी जीउंदी रही। इस प्रकार पुर आनंद मजारा, बिलसत गुरु बिलास उदारा। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। 1741 ਵਿਸਾਖ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਮ ਸਰਨ ਬਜਵਾੜੇ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁੰਦਰੀ ਰੂਪਵੰਤੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਡੋਲਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਅਰਪਣ, ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਈ ਦਾਸੀ, ਕਹਿਆ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਇਨਕਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਡੋਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਸੁੰਦਰੀ ਲੱਛ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਅੰਸ਼ਾ ਜੀਤੋ ਜੀਤੋ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਾ ਸੀ, ਪੋਤਾ ਦੇਖਣੇ ਦੀ ਤਲਬ ਗਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਡੋਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਿਆ ਉਤਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਅੰਤ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਭਾਵ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਐਸੀ ਰਜਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਬੇ ਭੂਪਤ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਬਣ ਇਸ ਥਾਨ, ਗਣ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸੁਣੀਐ ਸਕਲ ਬਣੋ ਸੁਚਿਤ ਸਵਧਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਹੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੀਰ, गमने देश कामरू तीर। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु तेग बहादुर सचे पातशाह जी जेड़े के वड्डे धीरज धारी सन जदों सतगुरु तेग बहादुर जी कामरू देश दे विच गए सन। बिशन सिंह ने पकाज बनायो तिस नरेंद्र को बोल मिलायो। बिशन सिंह राजे दे नाल उथों दे राजे दा सतगुरु तेग बहादुर सचे पातशाह जी ने मिलाप करवाया। ए जिहड़ी सारी कथा है आप जी इस नूं सतगुरु तेग बहादुर जी दे प्रसंग दे विच सुन चुके।
जावियत है बेकीनी त्यारी पसरियो सुजास जहां कहें पारी।
कवि जी लिखते ने कि जदों सतगुरु तेग बहादुर ने उथों वापस आउण दी तैयारी कीती उस वेले बहुत ज्यादा सतगुरां दा जस उस इलाके दे विच फैलिया।
देश असाम केर महिपाला जिसके पुत्र न होए किस काला।
असाम देश दा एक राजा सी जिस दे घर दे विच कोई औलाद नहीं सी।
कर कर थक्यो अनकी उपचार बीत गयो तरनापुर चार।
ओ जरा असाम दा राजा सी कवि जी लिखदे ने के थक हार गया सी हंब गया सी अनेकां तरां दे उपचारां नूं करके पर किसे भी तरीके दे नाल घर दे विच औलाद नहीं सी होई। बीत गयो तरनापुर चार। कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने इस तों इलावा राजा अपनी सोहणी जवानी दी उमर नूं वी गुआ चुका सी।
सुन कै गुर जस मुदत बिलंद जानकी पुरे कामना ब्रिंद।
सतगुरु तेग बहादुर जी दा जस उसने सुनिया ते राजा बहुत खुश होया। सुनिया के सतगुरु तेग बहादुर जी ऐसे ने जेड़े के हर एक मनुख दी कामना नू पूरिया कर दे।
अंतपुर को ले निज साथ मिलियो आए जह सतगुर नाथ।
ओ राजा अपनी राणी नू नाल लेके फिर सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे विच पहुंचया सी।
अनक अकोर अरप कर तरे दो कर जोर निहोर न करे।
राजे ने अनेकां प्रकार दियां भेटावां सतगुरां दे चरणां दे विच अर्पण कीतियां ते दोवें हथ जोड़ के फिर सतगुरां दे चरणां दे विच उसने बेनती कीती।
सोदे अभिलाखा अर्ज गुजारी सुन कर सतगुर करुणा तारी।
कवि संतोख सिंह जी पिछले ही वृतांत नूं सुना रहे ने कि राजे ने सतगुरां दे चरणां दे विच उस वेले बेनती कीती कि सच्चे पातशाह कृपा करके पुत्र दी दात बख्शो। श्री सतगुर करुणा तारी फिर सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने उस राजे दे उत्ते दया नूं धारण कीता।
होती हाथ में अक्षर छाप नृपत यूरू पर लाई आप।
सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने उस दे पट दे उते अखरां वाली छाप ला दिती।
कहियो बाक बर को तब तिसे उपजे पुत्र तोहे कर बिसे।
राजे दे पट दे उते सतगुरां ने मोहर लाई ते नाल ही सतगुरु तेग बहादुर जी ने वचन कीता कि राजा तेरे घर दे विच पुत्र जरूर पैदा होवेगा।
तिसके सिर पर मोहर हमारी हवै है चिन्नत सो बै सारी।
नाल ही सतगुरु तेग बहादुर जी ने राजे नूं इह वी आख्या कि जिहड़ी मोहर असीं तेरे पट दे उत्ते लाई है जिहड़ा तेरे घर दे विच पुत्र पैदा होवेगा उहदे सिर दे उत्ते साडी इह मोहर दा निशान होवेगा। जे ते तेरे पुत्र दे सिर दे उत्ते साडी इस मोहर दा निशान होया ते तूं फिर समझ जावीं कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे घरों तेनू पुत्र दी दात मिली है। पर सतगुरु तेग बहादुर जी ने राजे नूं आख्या कि जेकर तेरे पुत्र दे सिर दे विच इह निशान ना होया ते फिर तू समझे कि गुरु नानक दी कोई कृपा नहीं। हुणे जिहड़ी सारी वार्ता है इह भावें कि पिछे लंघ चुकी है कवि संतोख सिंह जी दुबारा इस गल दा बयान करदे ने कि इस तरीके दे वचन सतगुरु तेग बहादुर जी ने उस राजे दे नाल कीते सन। गोर ते ले कर निपकार गयो एक सम्मत में सोते उप जयो।
इस तरह का वरदान लैके राजा अपने घर नू वापस परत गया। एक वरे दे समय तो बाद उस राजे दे घर दे विच एक पुत्र ने जन्म लिया।
अनक आनंद बजाए वधाई बंट्यो दर्ब नरन समुदाई।
बहुत ज्यादा खुशियां मनाईया गईया ने उस राजकुमार दे जन्म लैण दे उते। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि राजे ने बहुत सारा धन गरीबां दे विच तकसीम कीता वंडिया।
प्रत पार्यो प्रिय पुत्र बडेरा करत प्रतीखण चिर नहीं हेरा।
कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि चंगे तरीके दे नाल उस पुत्र दी पालना पोषणा कीती गई। करत प्रतीखण चिर नहीं हेरा, पर कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि बहुता चिर बतीत ना होया।
करें दुलारन हरखत होए गुरजस उचरत दंपत दोए।
मां ते प्यो ने दोवां ने अपने पुत्र नूं बहुत ज्यादा लाड लड़ाए। दोवें जी बहुत ही ज्यादा खुश होए ते सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे उन्हां ने बड़ी उपमा बयान कीती।
सपत बरख को बालक पयो बैस अंत ते निप मर गयो।
कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों लड़का 7 वर्यां दा होया ते उहदा जिहड़ा पिता सी उस दी अचानक मौत हो गई। पिछे इतिहास दे विच जिक्र आया है कि राम नां दा राजा सी जिहदे घर दे विच इस पुत्र ने जन्म लिया। इतिहासकारां ने इस दे पुत्र दा नाम रतन राय लिखिया होया कि रतन राय ओ लड़का सी जिहड़ा कि राजे दे घर दे विच पैदा होया। कवि जी लिखते ने कि 7 वर्यां दा जदों ओ राजकुमार होया ते पिता गुजर गए।
मात रही जीवत प्रत पारा तब निप सुत ने ज सुरत संभारा।
माता ने फिर अपने पुत्र दी प्रतपालना कीती, उस नूं वड्डा कीता, जदों भाव के अपने होश नूं संभालिया रतन राय ने।
द्वादश सम्मत को जब होवा एक दिन मुकर पली बिद जोवा।
कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिन्ने चिर नूं ओ रतन राय वड्डा होया इसे ही समय दौरान सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी शहादत नूं प्राप्त हो गए, भाव के सतगुरु तेग बहादुर जी बैकुंठां दे विच चले गए सन।
द्वादश सम्मत को जब होवा एक दिन मुकर भली बिद जोवा।
जदों लड़का 12 सालां दा होया एक दिन ओ अपने मुंह नूं शीशे दे विच देख रहा सी।
कंगा करे सुके सन माहे पुन जूरो बंधन किया ताहे।
कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि केसा दे विच कंगा कर रहा सी ते फिर उसने अपने सिर दे उते अपने केसा दा जूड़ा कीता। इस तरह दे जिहड़े चिन्ह ने इस तों इह वी गल प्रतीत हुंदी है कि सतगुरु तेग बहादुर जी ने जदों वरदान दिता होवेगा पुत्र होण दा इह वी नाल वचन कीता होवेगा कि जेकर गुरु नानक दी कृपा दे नाल होया तुहाडे घर दे विच पुत्र ते उस नूं केसा धारी बनायो। इसे करके इस गल दा जिक्र आ रहा है के केसां दे विच ओ कंगा करदा सी। इस तों इलावा उन्हें केसां दा जूड़ा सिर दे उत्ते बनाया।
देखत मुकर बिखै निज सिर को तिस पर हेरियो चिन्ह मोहर को।
पावे के सारे सिर दे उत्ते बहुते सारे वाल सन, पर अचानक ही उसदी एक जगह दे उत्ते सिर दे उत्ते नजर पई है कि जिथे उसने एक छोटी जी मोहर दा निशान देखिया जिथे के केस भी उगे नहीं सन।
अंगरी संग केस को टारै बार बार सो थान निहारै।
पहलां कदे चंगे तरीके दे नाल उन्हें अपने सिर नूं देखिया नहीं सी। एक दिन अचानक कोई ऐसा कौतक वापरिया कि ओ देखन लगा, एकदम उस नूं लगा कि मेरे सिर दे विच कुछ निशान जिहा लगा जावदा है। उन्हें अपनी उंगली दे नाल अपने वालां नूं पासे कीता ते बार बार उस जगह नूं देखिया।
नहीं केस जामे क्या हेत लगी चोट जब बैस अचेत।
ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਜਬ ਬੈਸ ਅਚੇਤ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਟ ਐਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਬਿਸਫੋਟ ਨਿਕਸਿਓ ਹੋਏ ਇਮ ਸੰਸੈ ਨਿਪ ਨੰਦਨ ਕੋਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗਿਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।
ਪਗਿਆ ਬੰਦਤ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਨ।
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਇਮ ਮਨ ਠਾਣ ਪਿਆਨੋ ਕੀਨ ਜਿਹ ਠਾਂਤ ਪੁਰਿਆ ਸੀਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ।
ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਕਰ ਬੂਜੀ ਤਹਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਚਿੰਨ ਹੇਤ ਇਸ ਕਹਾ।
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਾਰਤਾ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈ?
ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਕੈ ਭਾ ਵਿਸਫੋਟ ਕੇਸ ਨ ਜਾਮੇ ਕੌਣੇ ਖੋਟ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਨ ਜਾਮੇ ਕੌਣੋ ਖੋਟ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ?
ਸੁਣ ਰਾਣੀ ਸਭ ਕਹਿਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵੰਤ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵੰਤ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਏ ਸਨ।
ਤੋਰ ਪਿਤਾ ਗਮਣਿਓ ਤਿੰਨ ਪਾਸ ਸੁਤ ਬਾਂਛਤ ਕੀ ਨਸ ਅਰਦਾਸ।
ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ੋ।
ਸੁਣ ਗੁਰ ਮੋਹਰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਈ ਚਿੰਨਤ ਸੁਤ ਹੋਏ ਸਿਰ ਉਪ ਜਾਈ।
ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਕੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹੀ ਪਾਲਕ ਤਨ ਲਾਗੀ ਜੋਈ ਤੋਹ ਸੀਸ ਪਰ ਜਾਨੋ ਸੋਈ।
ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
ਤੂੰ ਜਨਮਿਓ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਸਿਰ ਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਨਾ।
ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। हे जननी सो सत गुर कहां जिन में शक्ति पईत महा। इस तरीके की वार्ता अपने पुत्र रतन राय नो राणी ने सुनाई। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र उपदेश दे विच भी इस साखी का जिक्र आउंदा है कि जदों राणी ने दस्या ते फिर पुत्र ने अगों सवाल कीता कि माता जी जिन्हां सतगुरां दी कृपा दे नाल मेरा जन्म होया तुसीं उन्हां दे बारे पहला दस्या क्यों नहीं। ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे मुखारबिन दे वचन ने कि माता ने अगों आख्या कि अरदासां आईयां होईयां ने पाव के होला महला आउण वाला है मैं ते तेनूं दिखाईयां नहीं। मैं सोचिया कि जवानी दी उमर है पता नहीं तू इस गल दे विच विश्वास करें जां ना करें। ये सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी अपने उपदेश दे विच बयान करदे ने। मैं सिर्फ फर्ज कर रहा सी कि राणी ने अपने पुत्र रतन राय नूं इह सारी वार्ता सुनाई कि सतगुरु तेग बहादुर जी दे कृपा दे नाल तेरा जन्म होया। अगों फिर वो की कहिंदा है, हे जननी सो सतगुर कहां जिन मैं शक्ति पईत महा। कहिंदा है कि माता जी जिन्हां दी कृपा दे नाल मेरा जन्म होया जेड़े के वड्डे शक्तिशाली ने जेड़े के शक्तियां दे नाल कुछ भी कर सकदे ने जिन्हां दी शक्ति दा कोई उथा नहीं है कि उन्हां दे वचन करन दे नाल मेरा जन्म होया। माता जी फिर वो सतगुरु जी किथे ने। दर्शन कर बे मन उमगायो जिनके बढ़ते मोहन प जायो। रतन राय अपनी मां नूं कहिंदा है कि ऐसे सतगुरां दा दर्शन करन नूं मेरा जी करदा है जिन्हां दी कृपा दे नाल मैं पैदा होया। राणी कहियो सो बैकुंठ गए गादी पर तिनके सुत पए। अगों राणी ने अपने पुत्र रतन राय नूं आख्या कि जेड़े सतगुरु तेग बहादुर जी सन जिन्हां दे वरदान दे नाल तेरा जन्म होया कहिंदी है कि ओह ते बैकुंठां दे विच चले गए ने पाव के शरीरक रूप दे विच सतगुरु तेग बहादुर जी दुनिया दे उत्ते मौजूद नहीं हन। पर कहिंदी है गादी पर तिनके सुत पए पर उन्हां दी गुरियाई गद्दी दे उत्ते उन्हां दे साहिबजादे बैठे ने। जन्मे पटने नगर मजारी बड़े होए जब सुरत संवारी। माता ने आख्या कि सतगुरु तेग बहादुर दे विच ते उन्हां दे साहिबजादे दे विच कोई भेद नहीं है पाव कि ओ ज्योति जोत समा गए ने उन्हां दी जगह दे उत्ते ओ बैठ गए ने जिहड़ी सतगुरु तेग बहादुर दी जोत है ओही उन्हां दे साहिबजादे दे विच आ गई है। कहिंदी है कि जन्म ते उन्हां दा पटने साहिब दे विच होया पर जदों वड्डे होए जदों उन्हां ने सुरत नूं सांभिया ते फिर ओ आनंदपुर आ गए। देश पंजाब हो तो तिन केरा तिस थल जाए टिके तिस बेरा। कहिंदी है कि जन्म पटने दे विच होया जदों सुरत नूं सांभिया ते फिर पंजाब दे इलाके दे विच ओ अपनी निज जगह आनंदपुर दे विच आण के ऐस वेले टिके होए। अपन देश ते दूर बडेरे दिखियत गमणे पंथ कनेरे। कहिंदी है कि अपन देश ते दूर बडेरे पाव के साडे देश तों साडे इस इलाके तों ओ बहुत दूर दा रस्ता है दिखियत गमने पंथ कनेरे बहुत लम्मा रस्ता है आनंदपुर दा जिथे के सतगुरां दा इस वेले वासा है। निप सुत सुनत हृदय आनंद जगी देख बेचाह बिलंद। कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने कि जदों माता ने इस तरह दियां गल्लां दसियां ते फिर उस रतन राय दे मन दे विच बहुत ज्यादा आनंद पैदा होया ओ छेती तों छेती सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा दर्शन करना चाहुंदा। Thank you. विनती त्यारी करवावत वस्त अजायब को खोजवावत। उसे दिन तो रतन राय ने तैयारी जान दी शुरू कर दी है। सतगुरां नूं जो कुछ भेटा जाके अर्पण करना है ओ वधिया तो वधिया चीजां उसने लभनियां शुरू कीतियां।
मसलत करत मंत्रियन संग हित या कोर ले कितक तुरंग।
क्योंकि पिता दी मौत हो गई सी इस करके राज गद्दी दे उते ए रतन राय ही बैठा सी। अपने सारे मंत्रियां दे नाल इसने सलाह कीती है ते फिर सतगुरां दी भेटा दे वास्ते बहुत कीमती घोड़े खरीदे।
चपल बली जिन बेग बिसाले जरी जीन कंचन के डाले।
बड़े चंचल ते बली जड़े घोड़े ने ओ रतन राय ने खरीदे ने जिन्ना दे उते सोने दियां काठियां पाईयां गईयां।
आद पुतलीन से एक मतंग कद छोटो नहीं दीर्घ अंग।
कवि संतोख सिंह जी लिखते ने इस तो इलावा एक अजीब किस्म का हाथी राजे ने मुल खरीदया है। कद छोटो नहीं दीर्घ अंग जड़ा के बहुत छोटे मदरे कद दा है ओदे अंग बहुते वड्डे ने।
जितो रोट का केर यकार सुंदर हो तो सफेद लीलार।
किस तरह दा हाथी है उसका कवि जी ने जिक्र किया है। कवि जी लिखते ने कि छोटे कद दा हाथी सी एक रोटी जिन्नी हुंदी है प्रशादे दे वर्गा गोल आकार दा एक चिन्ह सी चिट्टे रंग दा जिहड़ा कि हाथी दे मत्थे दे वैसे करीब एक प्रशादे जिहड़ा।
तिसी सुपैदी की शुभ तारी उतरी तरी सोंड लग सारी।
एक रोटी दे आकार दा जिहड़ा चिन्ह सी चिट्टे रंग दा ओ सफेद चिट्टे रंग दा ओ ते हाथी दे मत्थे दे विसी। इस तों इलावा एक मोटी लीक सुंड तों लैके पूरी चलदी सी पूरे शरीर दे उत्तों लंघ के ओ पूछ दे तक जांदी सी।
सिर पर होए कर गई पिछारे लांगल मूल तीक एक सारे।
ओ जिहड़ी चिट्टी लीक है सुंड तों शुरू होके ते सारे शरीर उपरों कमर दी हुंदी होई ओ पूछ दे तक पहुंचदी सी। इस तरह दा ओ हाथी सी।
अपर यकार सुकारा सारो सकल अंग सुंदर दुत बारो।
कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि भावे ओ सारे दा सारा हाथी काले रंग दा सी पर ए अजीब किस्म दी गल सी कि चिट्टे रंग दी एक लीक सुन तो लैके पूछ दे तक जांदी सी। इस तों इलावा मत्थे दे विच एक रोटी जिन्ना चिट्टा चिन्ह सी।
पुन सिख्या दे भले सिखायो करे सुनरजिम चह करायो।
कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि ऐसे हाथी नु राजे रतन राय ने खरीदया ते फिर उस नु बहुत तरीके दी सिख्या दिती गई भाव के ओ इशारे दे नाल चलदा सी जो मनुख कहिंदा सी हाथी ओदे कहे दे मुताबक ओही कुछ करदा सी।
सुंड बिखे गह लेत मशाल ठांडे करे प्रकाश विशाल।
की को जो हाथी करदा सी ओदा जिक्र कवि जी कर रहे ने। कवि जी लिखदे ने कि जेकर ओदी सुंड दे विच जगदी हुई मशाल नूं फड़ा दित्ता जावे ते रात दे वेले ओ अपनी सुंड नूं उपर करके रस्ते दे विच प्रकाश करदा सी चानण करदा सी।
करत रहत निपके सिर चौर चिर लो खरो पाछली ठौर।
जिन्ना चिर राजा रतन राय अपने दरबार दे विच बैठा रहिंदा सी ओना चिर तक ओ जिहड़ा हाथी है अपने सुंड दे विच चौर फड़ के ओदे सिर दे उत्ते चौर करदा रहिंदा सी।
जे तक तीर चलावन कर बीन बीन तिन आगे तरें।
जदों किते राजा शिकार खेडण दे वास्ते बाहर जांदा सी ते जिन्ने राजा तीर चलाउंदा सी ओ दूर जाके ओ जिहड़ा हाथी सी ओ सारिआं तीरां नूं इकट्ठे करके फिर लै आउंदा सी लब लब।
एते आदिक गुण जिसमें कने जबे आए कर तिस टिग पने।
भाव के इस तरह दे बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े गुण सन उस छोटे जिहे कद दे हाथी दे विच सन। आसे अद्भुत सुन मह पत नंद मुख मांग्यो तन पठियो बिलंद। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि ऐसा जरा अद्भुत हाथी से उस नु राजे रतन राय ने खरीदया मुंह मंगी कीमत दे के। गोर हित हरखत है कर लीनो सीता कृताद खान को देनो पाव के सतगुरां नु अर्पण करन दे वास्ते राजे रतन राय ने उस हाथी नु खरीदया सी के सतगुरां दी भेटा रख के गुरु जी दी खुशी नु प्राप्त करांगा। सीता कृत आद खान को देन इस तो इलावा खंड घ्यो ते बहुत सारियां वधिया जिहड़ियां निहारियां सन उस हाथी नु चारियां गईयां।
दूर देश ते ए मंगवायब चाहत चित सत गुरु रजायब।
किसे दूर देश दे विचों किसे दूर इलाके तो कवि संतोख सिंह जी लिखते ने इस हाथी नू सतगुरां दी पेटा रखण दे वास्ते राजे ने मंगवाया सी।
पंच कला एक शस्त्र अजायब त्यार करायो अर्पण साहिब।
कवि संतोख सिंह जी लिखते ने इस तो इलावा राजे ने एक पंज कला नां दा शस्त्र हथियार खरीदया सी जड़ा के बहुत ही ज्यादा अलौकिक सी। त्यार करायो अर्पण साहिब सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी नूं अर्पण करन दे वास्ते ओ उसने अपने वल्लों बहुत ही कीमत ला के त्यार करवाया सी।
रहे गातरे बण्यो किरपाण तीखण धार तरह रिपहाण।
कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि पंज कला उसका नाम इस करके रखा सी क्योंकि भावे एक ही हथियार लगता सी पर पंज वक्री वक्री तरह के हथियार ओ सिक्के दे बन जाते सन। कवि जी लिखते ने रहे गातरे बण्यो किरपाण आम करके ते किरपाण की शकल का ओ बन के पंच कला शस्त्र रहिंदा सी पर कवि जी लिखते ने कि जदों उसकी कला नू एक वार दबिया जाता सी ते फिर तीखण तार करे रिपहाण पाव के गात्रे दे विच तलवार बन के रहिंदा सी जिहड़ी के तिखी तार दी तलवार हुंदी सी जिहड़ी के वैरी नू मारन दे वास्ते काफी।
पुण कल दा बेबरछी होए जाए सनमुख यार के हते बिगाए।
आम तौर ते ओ किरपाण बन के पंच कला शस्त्र रहिंदा है जदों उसकी कला नू दब दिता जांदा है ते फिर अचानक ओ बरछी दे विच तब्दील हो जांदा है पाव के बरछी बन जांदी है। सनमुख यार के हते बगाए जिस बरछी नू वैरी दे सामने जाके मारिया जा सकदा।
पुण कल दा बे बने तमाचा गुलका डार हते रण माचा।
जेकर दोबारा फिर कला नू दबा दिता जावे ते फिर बरछी दी जगह दे उते ओही तमंचा बन जांदा है पिस्तौल नू आख्या जांदा है तमंचा। कहिंदे ने फिर पिस्तौल बन जांदा है ते जिदे विचों गोली दा वार करके युद्ध भूमि दे विच वैरी नू मारिया जा सकदा।
तीखण पुण कटार बन जाए रिपटिग पहुंचो उधर तसाए।
ते जेकर फिर दोबारा कला नू दबिया जांदा है ते फिर उसे ही जगह दे उते तिखी कटार बन जांदी है वैरी दे लागे जाके ओदे पेड़ दे विचे इस तिखी कटार नू तसाया जा सकदा।
पौने एक चौकी लई अजायब करण प्रसन्न सतगुरु साहिब।
ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि यह जरा पंच कला शस्त्र सी ये सतगुरां दे वास्ते उसने बनवाया है जिहड़ा कि पंज शकलां नू बदलदा है एक किरपाण दूसरी बरछी तीसरी कटार चौथा तमांचा ते इक पंजवां सी गुरज जिन्हू गदा कह दिंदे आ। यह पंज शकलां बदलदा सी इसे करके पंच कला शस्त्र इसका नाम रखिया गया। कवि जी लिखते ने पौने एक चौंकी लई अजायब करण प्रसन्न सतगुरु साहिब। इस तों इलावा राजे रतन राय ने एक बहुत सुंदर अजीब किस्म दी चौंकी खरीदी है सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी नूं प्रसन्न करन दे लई।
जब इस की कल दा बण कर पुतली चार निकसत है थिरे।
जिस तरह के पंच कला शस्त्र अजीब ते अलौकिक सी कवि जी लिखते ने यह जिहड़ी चौंकी सी ए भी बड़ी विलखण किस्म दी सी जदों इस दी कला नू इस दे बटन नू दबाया जांदा सी ते फिर चारे पासियों चार जिहड़ियां पुतलियां ने ओ निकल के रुक जांदियां सन। चौपर को बिछाए तेने आगे डल को गहसो खेलन लागे। अचानक पुतलियां चारे पासों निकल दिया सन ते चौपड़ दी जिहड़ी खेड़ है उस नूं विचकार विछा दिता जांदा सी ते पासियां नूं डलां नूं घेरदियां होईयां उह चौपड़ दी खेड़ खेडण लगदियां सन। पुण लीलस इक जाम कटोरा इन हित दरब दियो नहीं थोरा। कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने इस तों इलावा राजे ने इक जाम खरीदया है कटोरा प्याले दे वांग बनया होया जिहड़ा कटोरा है उस नूं जाम आख्या जांदा है जिहड़ा कि अक्सर चांदी दा हुंदा है। इस जगह दे उत्ते संपादक जी लिखदे ने कि जामे जम दे भाव दे वल इस जगह दे उत्ते कवि जी ने इशारा कीता है। संपादक जी लिखदे ने जमशैद बादशाह ने एक प्याला बनवाया सी जिस दे विच जमीन आसमान दे नक्शे आदि जो चाहे ओ देख लैंदा सी। इसी तरह दा एक कटोरा भी कुछ तिलसमी बनावट दा होएगा। भाव के तिलसमी सी जादू वाला एक कोई कटोरा होएगा जेड़ा के बहुता सारा धन दे के उस राजे ने सतगुरां दे वास्ते खरीदे।
इत्यादिक वस्तु समदाए रुचर विभूखण खचत कराए।
ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने इस तरीके दियां बहुत वड मुल्लियां जिहड़ियां चीजां सी उह राजे ने बहुतियां खरीदियां जिन्हां चीजां खरीदियां होईयां दे विच बहुत कीमती कपड़े ते बहुत कीमती गहने भी शामिल सन जिन्हां गहने दे विच तरह तरह दे हीरे जड़े होए सन।
बहु अंबर बहु बिद के लीन चलियो हित त्यारी निज कीन।
ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि बहुते सारे कपड़े तरह तरह दे राजे ने खरीदे ने चल बे हित त्यारी निज कीन। सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा दर्शन करन दे वास्ते राजे ने इस तरीके दियां तैयारियां कीतियां ने भावे के राजे ने बहुत कुछ खरीदया सतगुरां नूं अर्पण करन दे वास्ते पर दो चार चीजां ऐसियां ने जिहड़े के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ने जिस तरह के ओ हाथी है जिहड़ा बड़ा अलौकिक है जिहड़ा मदरे कद दा है जिहदे विच गुण बहुते ने ओ अजीब किस्म दा हाथी विरखण है। इस तों इलावा जिहड़ा पंचकला शस्त्र है ओ भी बड़ा अद्भुत है। इस तों इलावा जिहड़ी चंदन दी चौकी है ओहदी भी कोई जिहड़ी उपमा है ओ बयान कीती नहीं जा सकदी कि किन्नी ओहदे विच खूबी है। इस तों इलावा इह जिहड़ा तिलसमी जाम है कटोरा है इह भी बड़ा अलौकिक है। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि बहुत कुछ बड़ियां कीमती भेटावां राजे रतन राय ने सतगुरां दे दर्शन करन दे वास्ते ते उहनां दे चरणां दे विच अर्पण करन दे वास्ते इकट्ठियां कीतियां ने। किस तरीके दे नाल ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕਾਂ।
ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਣ ਹਾਰ ਹੇ ਸੰਤਾ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨੇ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸ ਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਇ ਜਾਹੀ ਕੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ ਤਾਹੀ ਕੁਲ ਕੋ ਨਾਮ ਪੁਨ ਦਵਾਦਸ ਗੁਰਿੰਡ ਕਉ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਰਨਾਮ।